जय राधे जय हो कृष्णा जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन
पुकारो सब पुकारो
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभु पदा प्रभु पदा जय प्रभु पदा जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव
नितई गौर प्रेमानंदे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे रामा। राम राम हरे हरे। तो आप सबका श्री राधा कुंड पे स्वागत है। श्री राधा कुंड जो है वो पूरे ब्रह्मांड का एक सर्वोच्च स्थान है। रूप गोस्वामी ने कई ग्रंथ लिखे हैं, उसमें एक है उपदेशामृत, दूसरा एक ग्रंथ है भक्ति रसामृत सिंधु। और भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ जो है उसको स्वयं राधा रानी का स्वरूप माना गया है। श्रीमद् भागवत को श्री कृष्ण का व्यक्तिगत स्वरूप माना गया है। श्रीमद् भागवतम इज पर्सोनिफिकेशन ऑफ श्री कृष्ण हिमसेल्फ। और श्री भक्ति रसामृत सिंधु यह ग्रंथ जो है वो राधा रानी का स्वरूप है। यानी कि राधा रानी का जो व्यक्तित्व है, जो राधा रानी के गुण हैं, उनकी पर्सनालिटी है, उनके विषय में उनका हृदय का सार, उनका भाव और उनके द्वारा जो प्राप्त हमारे लिए भेंट है वो है भक्ति। वो भक्ति के विषय में विवेचन पूर्वक विस्तार पूर्वक वर्णन जो है वो रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु इस ग्रंथ में किया है। शुद्ध भक्ति इस विषय में जो भी जानना चाहिए, जो भी जानना आवश्यक है, वो सारी जानकारी तकनीकी रूप में, तत्व विवेचन के रूप में भक्ति रसामृत सिंधु में दिया गया है। तो हर एक भक्त को वो ग्रंथ पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। वैसे वो ग्रंथ समझने में इतना सरल और इतना आसान नहीं है, लेकिन प्रभुपाद जी ने उसको बहुत ही प्रयासपूर्वक सरल बनाने का बहुत प्रयास किया है। उसमें शुरू शुरू के भक्ति के वर्णन के साथ साथ रस के परिपूर्णता तक वर्णन दिया है। भक्ति के अनेक अंगों का वर्णन किया है, कैसे उसको पालन करना है उसका वर्णन किया है। और प्रभुपाद जी की ये खासियत है कि उन्होंने जो जो वर्णन दिया है उसके साथ साथ कई उदाहरण दिए हैं अलग अलग शास्त्रों में से, भागवत में से, भगवत गीता में से, पुराणों में से, उपनिषदों में से, अलग अलग बहुत रेयर जो पुराण होते हैं जो आमतौर को जानते नहीं लोग, उसके भी संदर्भ उन्होंने दिए हैं। और जो रूप गोस्वामी जी बात समझा रहे हैं उसको कई उदाहरणों के साथ समझाने का प्रयास किया, तो एक तरह से वो आसान हो जाता है, इतना मुश्किल नहीं होता है समझने में। लेकिन उसका अभ्यास करने में बहुत ही रुचि, इंटरेस्ट होना चाहिए। वैसे कहानी नहीं है, कहानी भी है उसके अंदर बहुत सारी, लेकिन तत्व ज़्यादा है। वो तत्व समझ में आएगा तो कहानी भी समझ में आएगी, नहीं तो कहानी एक मनोरंजन के रूप में रह जाएगी, उसका सार हृदय में प्रवेश नहीं करेगा। तो नाम क्या है उसका? भक्ति रसामृत सिंधु, इंग्लिश में कहते हैं नेक्टर ऑफ डिवोशन, उसका इंग्लिश अनुवाद है। तो उसमें भी वर्णन दिया है, लेकिन और एक उन्होंने किताब लिखी है, उसका नाम है उपदेशामृत। बहुत छोटी सी किताब है, उसके अंदर केवल 11 श्लोक हैं, बस इतनी सी किताब है, वो कुछ 20 रुपए की मिलती है, इतनी सी। लेकिन इसमें हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा सार उसमें छुपा हुआ है, उन 11 श्लोकों के अंदर। और उन 11 श्लोकों का तात्पर्य भी दिया है, और एकदम मूलभूत तत्वों से उसका आरंभ होता है। एक एक श्लोक पर आप 8-8 दिन व्याख्या कर सकते हो, इतना मतिथार्थ भरा है उसके अंदर, सो मच डीप। और हमारे जो इस्कॉन के इतने बड़े बड़े आचार्य हैं, सीनियर मोस्ट आचार्य हैं, वो आज भी इस किताब को आपको पढ़ते मिलेंगे, ट्रेन में, फ्लाइट में बैठे बैठे उसको पढ़ते रहेंगे। इतना सार जो भक्ति का है ना इसमें भरा हुआ है। जैसे भक्ति के लिए अनुकूल चीज़ें क्या है, भक्ति के लिए प्रतिकूल चीज़ें क्या है, प्रेम कैसे बढ़ता है, कौन से 6 चीज़ करने से प्रेम बढ़ता है, जो बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें हैं हमारे आपके दैनंदिन जीवन में भी आवश्यक है, वो कौन सी चीज़ करने से प्रेम बढ़ता है, इस तरह से वर्णन दिया उसके अंदर, बहुत सुंदर। उस उपदेशामृत में आखिरी श्लोक में वर्णन किया है कि राधा कुंड भक्त के जीवन का एक अंतिम गंतव्य स्थान है, लास्ट अचीवमेंट पॉइंट, राधा कुंड का निवास प्राप्त करना। आप लोग राधा कुंड के निवासी हैं? यस और नो? कितने लोगों का है ना यस है? कितने लोगों को लगता है कि आप राधा कुंड के निवासी हैं इस समय? कम से कम हाँ। राधा कुंड के निवासी बनने के लिए यहां पर घर होना, कमरा होना जरूर नहीं है। जितने भी क्षण आप यहां बिता रहे हैं उतने क्षण के आप राधा कुंड के निवासी हो, और वो कितने भी क्षण का, एक क्षण का क्यों ना हो, राधा कुंड का निवास प्राप्त करना ये जीवन की परमोच्च प्राप्ति है। क्योंकि उस एक क्षण के अंदर भी आपको जीवन की परमोच्च धन की प्राप्ति हो सकती है। अभी हमने तो योजना तो नहीं बनाया था आज, लेकिन राधा रानी ने बुला लिया दोबारा। कल ही सुबह हम लोग यहाँ पर आए थे दूसरे बैच को लेकर, लेकिन आप लोगों का भाव बहुत श्रेष्ठ था, आप लोगों ने बहुत इच्छा प्रकट की, राधा रानी ने बोला चलो दोबारा चलो हमारी गोद में। राधा कुंड का किनारा कोई साधारण चीज़ नहीं है। राधा कुंड के किनारे में आने के लिए बड़े बड़े संत लालायित रहते हैं, और ऐसे कोई संत नहीं है चारों संप्रदायों के जो राधा कुंड के किनारे आकर भजन नहीं किया हो। इसलिए अधिकतर सभी संतों की यहाँ पर बैठक है, तो कभी ना कभी वहाँ पर आए हैं और एकांत भजन किया है। ऐसे आप जप करते ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, नज़र से बाहर रहने पर सत्संग के बाहर मत रहना, अंदर ही रहना। हाँ, थोड़ा आ जाना आगे, जरा आपके देखने से हमको प्रेरणा मिलती है थोड़ा बोलने के लिए। हमारे बम्बई में बोलते हैं ना, आ जाओ मैदान में। तो क्या कह रहा था मैं? हाँ, सब संतों की यहाँ पर बैठक है। और हाँ, ये मैं कह रहा था कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर बम्बई में जब करेंगे, दिल्ली में करेंगे, कहीं कानपुर में करेंगे, तो आपको एक लाभ मिलेगा उसका। जब एकादशी होगी तो उसका एक ही दिन में वहीं पर कई गुना लाभ मिलेगा आपको। और अगर आप धाम में आ गए, जैसे वृंदावन धाम है, तो उसमें 100,000 मल्टीप्लाइड बाय 1,00,000 इतना लाभ उसी मंत्र को करने में मिलेगा। इसलिए हम कहते हैं यहाँ पर जब जब करेंगे ना तो दिल से करना, क्योंकि एक एक साथ में 100,000 लाभ मिल रहे हैं आपको। नहीं तो ध्यान से नहीं करेंगे तो कई 100,000 लाभ ऐसे निकल जाएंगे, क्योंकि ध्यान ही नहीं आपका। इसलिए यहाँ पर पहुँच पाना ही एक बड़े कृपा का परिणाम है। हाँ, कोई यहाँ पर नर्स बन के आया होगा, कोई टेक्नीशियन बन के आया, कोई कुछ इलेक्ट्रिशियन बन के आया होगा, कोई कुछ करने के लिए, कोई रोटी बेलने के लिए आया होगा। बहाने तो कई हैं, टोपियाँ कई हैं, है ना? कोई डॉक्टर है, कोई नर्स है, कोई कुछ है, कोई मैनेजर है, कोई आर्किटेक्ट की पत्नी है। है ना? लेकिन बहाना कई है, कई बहाने हैं, लेकिन आना यहाँ पर राधा रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए। और वो बहाने कई बना देती हैं, लेकिन मौका देती है कृपा देने के लिए, और हमको लेने के लिए वहाँ पर हमेशा तैयार रहना चाहिए। और कृपा लेने का एक ही माध्यम है, वो है चेतना, और कोई माध्यम नहीं है। हाथ से और झोली में कृपा ले सकते नहीं, आत्मा के पात्र में ही कृपा ग्रहण कर सकते हैं। और कृपा मिल गई, इसका प्रूफ क्या है? कृपा मिल गई, आपने ले लिया उसको, उसका एक ही प्रूफ है कि आपको दो चीज का परिणाम मिलेगा। अगर आपको कृपा हो गई इसका, अगर आपको खुद को जचना है, एक तो विषयों में आपका जो मन फंसा हुआ है, हाँ, एंजॉय करने में, अच्छी तरह से एंजॉय करने में, खराब तरीके से एंजॉय करने में, दोनों तरफ से एंजॉय करने का जो मूड है ना, भोगवाद कहते हैं उसको, वो कम हो जाएगा। और दूसरा, भगवान के विषय में, भगवान के नाम में आपको रुचि उत्पन्न हो जाएगी आज से अधिक। दिस आर टू सिम्टम्स ऑफ कृपा। अगर कृपा आपको प्राप्त हो गई है तो आपको खुद को लगेगा कि अभी मुझे पहले ना वो करने में बहुत इंटरेस्ट था, अभी मुझे वो नहीं है। पहले मुझे बहुत पैसे में इंटरेस्ट था, मैं हमेशा पैसा पैसा करके भागता था, अभी कम हो गया जरा। पहले से मुझे बहुत कुछ नहीं मिला मेरी इच्छा के अनुसार तो मुझे क्रोध आता था, क्रोध अभी वो थोड़ा कम होता है। उसका एक कॉमन सेंस है, अगर आपको रिकॉर्डिंग करना है एयरप्लेन मोड में रखो उसको, इतना कनेक्टेड रहने की जरूरत नहीं है। अगर आधा कुंड में है तो बाहर कनेक्शन की जरूरत क्या, बी कनेक्टेड हियर, स्टे कनेक्टेड हियर फुल्ली। और आपको रिकॉर्डिंग चाहिए तो हमारे पास पूरा रिकॉर्डिंग प्रोफेशनली हो रहा है, सबको मिल जाएगा, चिंता मत करना उसकी। आप उसमें कथा में डिस्टर्ब होता है ना, तो फिर क्या कह रहा था मैं, हाँ तो भगवान के विषय में जितने भी संबंध है ना, विषय है, जैसे कि भगवान का नाम है, भगवान की कथा है, भगवान की सेवा है, भगवान के भक्तों का संग है, भक्तों की सेवा है, भगवान के ग्रंथ है, भगवान के विग्रहों की पूजा है, भगवान के धाम का निवास है, कई सारे भगवान के विषय में जितनी चीज़ें हैं, सबसे मेन क्या चीज़ है, भगवान के नाम का जप, जो आप सब जगह करते हैं, यहाँ पर करते हैं, घर पे करते हैं, दिल्ली में करते हैं, परदेश में करते हैं, सब जगह जहाँ पर दिन रात आप करते रहते हैं उसका अपना नियम को, सबसे अधिक परिणाम आपको मिलेगा कि आपको भगवान के नाम में रुचि पैदा होगी। और जितनी नाम में रुचि पैदा हो रही है उतना ही आपके विषयों में मन हटने लगेगा, विषयों की रुचि कम होगी, नाम की रुचि बढ़ेगी, साइमल्टेनियसली ऐसा चलता रहेगा। तो उस प्रकार की कृपा प्राप्त करने के लिए हमको यहाँ आना है। हाँ, जैसे कि हम भोजन के लिए गए और वहाँ पर कोई प्लेट की व्यवस्था नहीं है, आपके पास भी प्लेट नहीं है, वहाँ पर भी व्यवस्था नहीं है, तो कैसे खा सकते हैं आप, कितना हाथ में लेके खाएंगे गरम गरम दाल, आपको पात्र चाहिए ना, पात्र, तो बिना पात्र की कृपा प्राप्त नहीं होती है, बिना पात्र के भोजन भी प्राप्त नहीं होता है। बोले खीर है गरम गरम तो दे दो, तो बोले नहीं नहीं गरम है हाथ जल जाएगा, एक पात्र लेके आओ तभी आप ले सकते हो, बहुत खीर खानी है तो आपको बड़ा पात्र लेके आना पड़ेगा। तो ये मैं सब क्यों बता रहा हूँ, यहाँ पर आते हुए बिना पात्र के मत आना, चलो भाई सब लोग जा रहे हैं, अभी मेरी पत्नी भी जा रही है, मेरा पति भी जा रहा है, मैं भी अकेला हो गया, चलो जाके आते हैं, अभी क्या है, इंटरेस्ट तो नहीं है लेकिन जाके आते हैं। तो यहाँ पर आके सुखी सुखे मत जाना लौट के, ये जगह तो इसलिए कह रहा हूँ कि ये जगह तो आपके आपके ही पुराने जन्मों के पुण्य कर्मों का और अच्छे कार्यों का फल का परिणाम है, ये जो आपने अनजाने में किए होंगे, कभी कोई संत आपके जीवन में आया होगा, आपने उसको मदद की होगी, आपको जानते नहीं संत हैं लेकिन आपने एज नेचुरली मदद की होगी, ऐसे कई चीज़ आपने की होगी जिसका कहते हैं अज्ञात सुकृति कहते हैं उसको, और कुछ जानबूझ के किया होगा कि भाई कोई संत आया है तो सेवा करनी चाहिए, ऐसा समझबूझ के किया होगा। इन सारे अनंत जन्मों के अनंत कार्यों का परिणाम के स्वरूप भगवान आपको इस जीवन में भक्तों का संग देते हैं, संत का संग देते हैं, संतों का आसरा देते हैं, लेकिन इस जन्म में आने के बाद हमारी मति जो है ना वैसे गड़बड़ हो जाती है ना, पहुंच तो गए लेकिन वहां जाने के बाद में बोलते हैं अभी इंटरेस्ट नहीं है उसके अंदर, क्या करें ऊपर जाके, अभी ऐसा आपको लग सकता है दुर्भाग्य की वजह से, क्योंकि आपका जो आज का जीवन है ना वो आपके पुराने जन्मों का जो फल है और आपका आज का जो कार्य है उसका एक मिलन है। योर करंट लाइफ इज पास्ट कर्मा प्लस टुडेज एक्टिविटी इज इक्वल टू टुडेज लाइफ। आपको समझ में आया, बहुत लोग पुण्य करते हैं बहुत जमाने में, पुराने जमाने में जन्म में, लेकिन इस जन्म में आकर पाप करते हैं, कुछ संगति की या कोई भी इच्छा की वजह से, इंटरेस्ट नहीं की वजह से। तो आज का जीवन जो है वो पुराने जमाने का पुण्य और आज के बुरे अच्छे करतूत है उसका परिणाम आज मिलेगा आपको। दो दोस्त जंगल में गए थे घूमने के लिए, बहुत पुराने दोस्त स्कूल के, एक श्रद्धालु और गरीब, दूसरा अश्रद्धालु और अमीर। तो अश्रद्धालु जो है वो हमेशा कोसता था क्या फायदा है भक्ति करके, देखो गरीब के गरीब रह गए तुम, निठल्लू रह गए, मैं देखो भजन नहीं करता कुछ नहीं करता फिर मेरी समृद्धि बढ़ती जा रही है, क्या फायदा है भक्ति करके, ऐसे करके अलग अलग जीवन जी रहे थे। लेकिन एक दिन एकत्र मिले, जंगल में गए घूमने के लिए, बहुत दिनों के मित्र थे, तो बहुत वर्षा हो गई, बहुत तूफान वर्षा हो गई, और एक पेड़ के सहारे खड़े थे वो बारिश में, तो वो पेड़ ही गिर गया बाद में। तो उस पेड़ से एक सोने की मोहरे की थैली जो है वो अमीर आदमी के हाथ में पड़ गई। वो लोग ना छुपा के रखा करते थे पहले पेड़ के अंदर के होल में, तो उसमें सोने की मोहरों की थैली जो है वो अश्रद्धालु और अमीर व्यक्ति के हाथ में आ गई, और उसी पेड़ की एक शाखा गरीब और श्रद्धालु व्यक्ति के पैर में घुस गई और पूरा उसका हड्डियों के कई टुकड़े हो गए। तभी वो अश्रद्धालु बोलना, देख आज तक अपने जीवन अलग अलग थी, है ना, जुदा जीवन था हमारा, आप कहीं थे मैं कहीं था, चलो ठीक है तब तक हम समझ सकते, लेकिन आज एक घटना में एक प्रसंग में हम दोनों रहे और आपके पैर में पेड़ का लकड़ी घुस गया और मेरे हाथ में सोने की मोहरों की थैली आ गई, कहाँ है तुम्हारे भगवान, क्या है भक्ति का महत्व। तो वो श्रद्धालु के मन में थोड़ा सा ऐसा हिल गया मन उसका, क्या है सत्य। तो उनको पता था कि जंगल में एक साधु आए हैं और निवास कर रहे हैं, तो बारिश थम गई, फिर वो श्रद्धालु अश्रद्धालु मित्र दोनों साधु के पास गए और उन्होंने बोला, महाराज जी ऐसे ऐसे हुआ है, आप बताइए, आप त्रिकालदर्शी हैं, आप भविष्य भूत और वर्तमान को जानते हैं, आप देखिए कि हमारा क्या रिकॉर्ड है। तो वो चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं और कहते हैं, अभी वो जो कहते हैं ना वो ध्यान से सुनना, वो कहते हैं कि ये जो अश्रद्धालु अमीर व्यक्ति है इसने पिछले जन्म में इतने पुण्य किए हैं कि आज के समय उसको राजा बनना था, उसका राज्याभिषेक का दिन था आज, लेकिन इस जन्म में उसने इतने पाप किए हैं कि एक सोने की मोहरों की थैली पर वो राज्याभिषेक आ गया है, मतलब रिड्यूस्ड टू अ गोल्ड कॉइन पैक। और ये जो श्रद्धालु व्यक्ति है गरीब, उसका आज के दिन मृत्यु निश्चित था, आज वो मरने वाला था, तो वो एक पेड़ की शाखा पैर में घुसकर फ्रैक्चर में रुक गया है। ये गणित है ना, केवल उधर ऊपर से होता है, आप लोग नहीं कर सकते, हम लोगों को केवल एक ही काम करना है, मनुष्य जीवन मिला है तो भगवान का भजन करना है बस। और हम बोलेंगे इंटरेस्ट नहीं है, बहुत काम है, बिजी है बहुत, और क्या है किसका भला हुआ है भगवान का भजन करके, ऐसे सब लोग होते हैं बोलने वाले कि मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो मेरे काम से मतलब है और नेकी से काम करता हूँ, किसी को चीट नहीं करता हूँ, यही मेरा भक्ति है, मुझे भगवान में इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा बहुत लोग बोलते रहते हैं। लेकिन आप कुछ भी सोचो, जो भगवान का नियम है ना वो सब पर लागू होता है। आप बोलेंगे मुझे सिग्नल पे विश्वास ही नहीं है, तो आप तोड़ोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि सिग्नल पे विश्वास करना जरूरी है, बाद में आएगा पुलिस और आपको पकड़ेगा, लाइसेंस लेगा, आपको अरेस्ट करेगा और बोलेगा कल आओ कोर्ट में। तो आप विश्वास करो या ना करो, वो मुंबई के समुद्र किनारे की पानीपुरी खाओ, आपको बोला गया कि आपको टाइफाइड हो सकता है, बोले काय का टाइफाइड होता है, कुछ नहीं होता है, और आप खाओगे दस्त लगेंगे बाद में टाइफाइड होगा, तो आपको मानना पड़ेगा कि हाँ उसमें टाइफाइड के जंतु थे। मानो या ना मानो, प्रकृति के नियमों का असर हमारे ऊपर होता ही है। उसी प्रकार से भगवान है कि नहीं आप श्रद्धा रखो या मत रखो, लेकिन उसके नियम आपको लागू हैं। उसी प्रकार से अभी आपने कुछ अच्छा किया है तो उसका परिणाम स्वरूप आप यहाँ पर बैठे हो राधा कुंड किनारे में। हर एक व्यक्ति का इंटरेस्ट लेवल अलग है, यहाँ पर हर एक लेवल का समर्पण अलग है, हर एक व्यक्ति की श्रद्धा अलग है, हर एक व्यक्ति का भाव अलग है, लेकिन सबको भगवान ने इकट्ठा बुलाया है यहाँ पर। और वो कहते हैं ना, चाहे 50 लोग आए या 500 लोग आए, 5000 लोगों का भोजन बन के तैयार है, तो 50 आए तो 50 खाएंगे, 100 आए तो 100 खाएंगे, और कोई बड़ा तगड़ा आदमी आएगा तो 4 आदमी का अकेला खाएगा। जैसे हर एक आदमी का कैपेसिटी लेने का अलग अलग है, कहने का मतलब ये है। तो मैं चाहता हूँ कि आपका जो भी कैपेसिटी है उसको पूरा इस्तेमाल करो आज आप और ले लो, क्योंकि यहाँ पर कब आप दोबारा आओगे इसका ठिकाना नहीं है, क्योंकि ये जगह जो है ना रूप गोस्वामी के कथन के अनुसार सर्वोच्च पवित्र स्थान है। ये रूप गोस्वामी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो लीला हुई है, राधा कुंड का निर्माण जब हुआ तो राधा कुंड के निर्माण के समय स्वयं कृष्ण ने ये वरदान दिया है कि ये जगह जो राधा कुंड है ये राधा रानी का प्रेम ही जल के रूप में यहाँ पर विराजमान है। आपको दिखने में गंदा वंदा दिखेगा, वो सब आपकी हमारी दृष्टि है, प्रकृति का परिणाम है, लेकिन जो जल का सार जो है, तत्व जो है यहाँ का, वो राधा रानी का प्रेम है, द्रव रूप में, जल रूप में प्रकट है यहाँ पर। जो प्रेम राधा रानी के मन में है वो यहाँ पर वाटर के रूप में अवेलेबल है। दूसरा वरदान दिया है कि इसमें जो भी आचमन, स्पर्श, स्नान, दर्शन करेगा वो मुझे उतना ही प्रिय होगा जितनी प्रिय राधा रानी मुझे है। देखो आप कितना कहां से कहां वरदान दे दिया। ऐसा नहीं कहा कि जो काला है, गोरा है, अमीर है, पढ़ा लिखा है, श्रद्धालु अश्रद्धालु नहीं, जो भी आएगा वो जल को स्पर्श करेगा वो मुझे उतना ही प्रिय होगा जो राधा रानी जितनी प्रिय है मुझे। और जो भी ये जल स्पर्श करेगा, राधा रानी का कितना मुझ पर प्रेम और भक्ति है उतनी उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाएगी। लेकिन एक ये जो वरदान है ना, जो मैंने बताया अभी, वो एक वीजा की तरह है। पता है वीजा क्या होता है? परदेश जाने के लिए एक लगता है पेपर, उसको वीजा कहते हैं, उस देश से आता है वो। तो वीजा आप में, आपके हाथ में है, मतलब आप परदेश पहुंच गए क्या? कितने लोग विदेश गए यहां से बताइए, कितने लोग विदेश गए? हाँ, जब वीजा आपके हाथ में आया उस दिन विदेश पहुंच गए आप? नहीं, उसके बाद में आपको पैसा इकट्ठा करके टिकट निकालना पड़ता है। और टिकट निकालने के बाद विदेश पहुंच गए कि आप? नहीं, टिकट निकालने के बाद आपको एयरपोर्ट पहुंचना पड़ता है, हवाई जहाज में बैठना पड़ता है, और फिर आपको वो अगर अपघातग्रस्त नहीं हो गया, दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ, कहीं तूफान आया नहीं आया, सही हो गया, वेदर भी ठीक था, कहीं इंग्लैंड के बदले में वापस कराची में उतार दिया आपको ऐसा हो सकता है ना। तो वीज़ा मिलने के बाद में उस देश में पहुंचने के लिए भी कई स्टेप्स हैं बीच में, और सब कुछ सही रहा तो फिर आप उधर उस भूमि पर प्रवेश कर सकते हो। इज इट लॉजिकल? तो ये वरदान भी उसी तरह से है। आप बोले प्रभु जी सबने स्पर्श किया, कोई चमत्कार दिखा नहीं आज? नहीं, चमत्कार आपके ऊपर है। जैसे वीज़ा मिलने पर आपको गारंटी है कि आप अगर कोशिश करोगे तो उस देश में पहुंच जाएंगे, ऐसा गारंटी है, उसी तरह से आप अगर उसको यहां पर आने पर आचमन करने के बाद में आपको सबको गारंटी मिलेगी कि आपको भक्ति प्राप्त होगी, लेकिन उसके लिए प्रयास भी आपको करना है। हमने अगर कहा कि मथुरा में अभी एक फलाने मंदिर में आपके लिए 1 करोड़ रुपया रखा हुआ है, तो आपको यहां से मथुरा वहां जाना पड़ेगा, आपका आईडी आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा कि मैं वही व्यक्ति हूं जिसके नाम पे 1 करोड़ रुपया आया है, प्रूव करेंगे तो आपको वो 1 करोड़ रुपया मिलेगा। यहां पर खबर मिलने के बाद मिलेगा क्या आपको? जाना पड़ेगा आपको वहां पर। यू कांट से कि और कोई तरीका है क्या? ये बहुत कंटाला हो, बोर हो रहा है मुझे अभी, कोई जा सकता है क्या मेरे लिए? मैं आधार कार्ड दे दूंगा, अथॉरिटी भी दे दूंगा, साइन भी कर दूंगा, आप दे देना उसको। नहीं मिलेगा, आपको ही आना होगा आपका आधार कार्ड लेके, तब जाकर मिलेगा। उसी तरह से ये वरदान है। आज आप स्पर्श कर रहे हो, आप अगर सुनिश्चित हैं, प्रयास करने को तैयार हैं, भजन करने को तैयार हैं, गलत आदतें छोड़ने को तैयार हैं, नाम जप करने को तैयार हैं, गुरु जी का आश्रय आज्ञा पालन करने को तैयार हैं, सुन रहे हैं आप, गुरु जी की आज्ञा पालन करने को तैयार हैं, श्री राधे सुना है आपको, विश्राम कर सकते हैं आप कमरे में। सो अगर आप वो आज्ञा पालन करने को तैयार हैं, नियम पालन करने को तैयार हैं, गुरुजी के द्वारा दिया गया नाम जप करने को तैयार हैं, तो वो सब करने से ये जो वीज़ा है इसका परिणाम उस देश में जाने में होगा। इसलिए मैंने आपको ये उदाहरण दिया। सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड है, कृपा तो बरस रही है। देखो वर्षा होती है ना, तो वर्षा कभी भेदभाव नहीं करती है कि ये मेरा भक्त है कि नहीं भक्त है। राक्षस के ऊपर वर्षा होती कि नहीं होती? हाथी के ऊपर होती है? हाथी के ऊपर, उसके ऊपर होती है। मच्छर के ऊपर होती है? उसके ऊपर होती है। लेकिन अगर आप चुनते हो कि मुझे अंदर जाना है, तो आपको वर्षा नहीं पड़ेगी, वो आपका चॉइस है। लेकिन वर्षा बिना भेदभाव के सब पर होती है। सूरज की किरणें भेदभाव करती है क्या? सब पर बरसाती है अपनी किरणें। किसको बैठना है धूप में, वो धूप में बैठ रहा है, किसको छाया में, छाया में बैठ रहा है, वो छतरी लेके बैठा है, उसकी इच्छा है। लेकिन भगवान की तरफ से कोई भेदभाव नहीं है। उस प्रकार से भगवान की तरफ से कोई भेदभाव नहीं है, सब जगह वर्षा हो रही है कृपा की, लेना हमको है, तो ऐसा स्थान है ये। यहां पर पूर्णता सचेतन रहना चाहिए, आत्मा का दरवाजा पूरा खुला रखना चाहिए, क्योंकि कृपा बरस रही है यहां पर, उसको ग्रैब करना चाहिए। और ग्रैब करने के लिए दो तरीके हैं, एक है एकाग्रता, फुल कॉन्सेंट्रेशन, और दूसरा है श्रद्धा। पूरी श्रद्धा के साथ जब आप एकाग्र हो जाओगे ना तो सारी कृपा मिलेगी आपको, चाहे वो आज उसका साक्षात्कार नहीं होगा, रियलाइज नहीं होगा, लेकिन मिल तो जरूर जाएगी आपको। तो आइए सब लोग हम पुकारे यहाँ पर, हाँ, क्योंकि भगवान भी यहाँ पर उदार हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं। राधा रानी पूर्णता से विराजमान है, पूरे अपने गौरव के साथ, विथ फुल ग्लोरी शी इज प्रेजेंट हियर, और आप यहाँ पर आ गए हो, कितनी बड़ी कृपा है। रूप गोस्वामी लिख रहे हैं संक्षेप में कि आप यहाँ पर आओगे सर्वोच्च प्राप्ति आपको हो सकती है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद जब यहाँ से बाहर जाएंगे ना तो दोबारा वो हाथी कैसा होता है ना, नदी में स्नान करता है फिर किनारे में आके लोटपोट होता है मट्टी में, तो उसको क्या कहते हैं, कुंजर स्नान कहते हैं। मतलब स्नान का क्या लाभ है, स्नान तो किया इतना स्वच्छ कर दिया शरीर, फिर जाके मट्टी में लोटपोट हो गया, तो एवरीथिंग इज वेस्ट ना, इट्स लाइक फुल एफर्ट इज वेस्ट गोइंग टू द रिवर टेकिंग बाथ। उसी प्रकार से यहां से वापस जाकर अभी बोलेंगे, अरे मैं कौन से दिन पहुंच रहा हूं, आपका ट्रेन कभी है, कल है, आपका ट्रेन कभी है, हाँ किसका ट्रेन आज और कल है, हाँ आप अभी कल पहुंच जाएंगे ना अहमदनगर पे, तो समझो आप अहमदनगर पहुंचेंगे और अरे वो सीरियल बहुत दिन से मैंने देखा नहीं, अभी कितने दिन में बरसाने में था ना वो सीरियल, पता नहीं अभी कहाँ तक पहुंच गया, वो शादी उसकी लल्लू की शादी भल्लू के साथ हुई कि नहीं हुई, और उसको बाद में क्या हुआ, ऐसे एक तो ट्रेन से ही सोच रही कि अरे ट्रेन टाइम पे पहुंच जाएंगे तो अच्छा है, वो सीरियल मिलेगा मुझे। तो मतलब आप क्या कर रहे हैं, जहां से आप छोड़ के आए थे वो वहीं दोबारा पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, और जो पीछे मिस हो गया वो भी मेमोरी किसी से पूछ के आप बोलेंगे बीच में क्या हुआ जरा बताओ, मैं आज पहुंचने वाली हूँ थोड़ा बता देना मुझे बीच में क्या हुआ, तो फिर क्या वो कुंजर स्नान हो गया, बेकार हो गया सब, वो वही टीवी है, वही फिर दुनियादारी है, वही झगड़े हैं, वही द्वेष है, वही माया है, वही लोभ है, वही रहेगा, वही रहेगा, तो फिर यहाँ पर आके नुकसान नहीं होगा आपको, लेकिन जितना लाभ होना चाहिए उतना लाभ भी नहीं होगा। अपने को क्या चाहिए, हृदय परिवर्तन होना चाहिए, किसी भी चीज़ करने से परिवर्तन आवश्यक है, परिवर्तन नहीं हुआ तो वो करने से लाभ क्या है, समय भी बर्बाद, बुद्धि भी बर्बाद, इच्छा भी बर्बाद, रिसोर्सेस भी बर्बाद हो गए, सब व्यर्थ हो गए सब। सो एवरी टाइम जब हम धाम में आते हैं ना तो हम परिवर्तन चाहते हैं, और परिवर्तन होना चाहिए, आज अगर 5% हो गया तो अगली बार 10% होना चाहिए, अरे 10 से 9 नहीं होना चाहिए, 9 कैसे होगा, वापस वही करने से वापस आ जाएंगे आप, 4 स्टेप होता ना वो सांप सीढ़ी कैसा होता गेम, नहीं कहते लैडर है ना, 92 तक पहुंच गए लेकिन 92 में बाप रे फिर 8 पे आ गए, है ना, ऐसे ऐसे गिर गए उसके अंदर नंबर, तो आप 92 से 8 पे आ गए, फिर वापस वही यात्रा है, पुनरपि चरणम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जटरा शयनम, वही घूमना है दुनिया में। तो हमको यहाँ से निकलना है दुनिया से, बस हो गया, जन्म मृत्यु बीमारी बुढ़ापा हेवा देवा द्वेष झगड़ा हाँ ला राग लोभ ईर्ष्या ये सब छोड़ के हमको जाना है भगवंत के धाम में प्रेम का अनुभव करने के लिए जो हम खो चुके हैं। तो यहाँ पर आने के बाद फिर दोबारा वही, जैसे ना कोई व्यक्ति हम जो उल्टी करता है तो क्या आप सोच सकते हैं कि मैं दोबारा खाऊंगा उसको जो उल्टी किया मैंने, विचार भी कर सकते हैं आप, लेकिन एक्चुअली हम लोग वही कर रहे हैं, जो तुमने त्याग दिया जिसको विसर्जित कर दिया उसको दोबारा खा रहे हैं, जिसको कई लोगों ने चूस चूस कर फेंक दिया उसको हम लोग बार बार चूस रहे हैं। हाँ पुनस् पुनस् चर्वित चर्विनानाम ऐसे प्रहलाद जी कहते हैं भागवत में, तो वो अगर करते रहेंगे तो यहाँ पर आके लाभ नहीं होगा ज़्यादा, और लाभ रहेगा तो वो अप्रकट रहेगा, वो इट्स लाइक अनमैनिफेस्ट में गुप्त रूप में रहेगा, वो प्रकट नहीं होगा। इसलिए मैं थोड़ी भूमिका तैयार कर रहा हूँ आपके लिए। यहाँ पर भगवान ने अरिष्टासुर का वध किया, उसके बाद भगवान ने अरिष्टासुर का पैर जहाँ पर गिरा था, कई जगह पर गिरा था, यहाँ पर जहाँ गिरा था वहाँ पर गड्ढा हुआ था, वहाँ पर श्याम कुंड का निर्माण किया, सभी तीर्थों को आह्वान करके सभी तीर्थ यहाँ पर प्रकट हो गए भगवान की इच्छा से, और भगवान ने स्नान किया, उसके बाद राधा रानी ने भी सभी तीर्थों को आह्वान किया और राधा कुंड का निर्माण हुआ, और राधा कुंड का निर्माण होते होते भगवान ने यह आशीर्वाद दिए। राधा रानी का निवास है यहाँ पर, इसको राधा कुंड घेरा कहते हैं, इसमें बलराम जी भी प्रवेश नहीं करते हैं क्योंकि वो भी राधा रानी और कृष्ण का अंतरंग जो लीला है उसके अंदर डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, क्योंकि बड़े भाई है ना, वो बड़े भाई आएंगे तो फिर छोटा भाई को संकोच होगा ना, तो फिर वो जो उत्कट लीलाएं हैं जिसका दर्शन उनको भी करना है बलराम जी को, तो वो दूर से कुसुम सरोवर किनारे से वहाँ पर खड़े होकर दर्शन करते हैं दूर दूर से, और यहाँ पर राधा रानी कृष्ण भगवान सुंदर सुंदर प्रेम की लीला करते हैं। राधा कुंड पे, श्याम कुंड पे एक घाट है पंच पांडव, वहाँ पर 11:48 पर राधा रानी आकर स्नान करती है। कितने बजे अभी अभी आई आती होगी, नित्य लीला है यहाँ पर। एक घाट पर राधा रानी और कृष्ण भगवान चौसर खेलते हैं, और राधा रानी और गोपियाँ कृष्ण भगवान को हरा देती हैं इसमें। यहाँ पर पंच पांडव जो है ना, वो पेड़ के रूप में भजन कर रहे हैं। उन्होंने इसका एक बार जब रेनोवेशन हो रहा था, तो रेनोवेशन करने वाले जो स्वामी जी थे रघुनाथ दास गोस्वामी, उनको स्वप्न में आके बताया कि ये पेड़ नहीं काटना, यहाँ पर हम लोग भजन कर रहे हैं। पांच पांडव दर्शन दिया उन्होंने, वो पंच पांडव घाट है वहाँ पर, उसमें से अभी एक ही पेड़ बचा हुआ है, वो भी मृत है, लेकिन एक समय पांच पेड़ थे, ज़्यादा लंबा नहीं, 30-35 पहले भी थे। तो ये बहुत अद्भुत जगह है, यहाँ पर अद्भुत चीज़ें होती है। आप बोलेंगे अरे पांडव कैसे पेड़ बन गए, लेकिन यहाँ बने हुए हैं भगवान की इच्छा से, भगवान की दया से, उनकी भी इच्छा से, क्योंकि यहाँ पर भजन करना ये परमोच्च प्राप्ति है। भगवान का चिंतन यहाँ बैठ के करना, इसका अनंत लाभ है आप लोगों को। तो ये किनारे में पहुँचना ही बड़े भाग्य की बात है। राधा कुंड और श्याम कुंड, साक्षात कृष्ण और राधा यहाँ पर जल के रूप में विराजमान है। तो इसके जल में ना हम लोग स्नान नहीं करते, हम लोग खाली स्पर्श करके आचमन करते बस। जानबा देवी नाम की नित्यानंद प्रभु की पत्नी थी, जो बलराम जी के अवतार नित्यानंद प्रभु थे, बलराम जी के अवतार हैं, स्वयं बलराम जी हैं। उनकी पत्नी रेवती जी जो है वो जानबा देवी बनकर आई थी 500 पहले अवतार लेकर, तो उन्होंने भी यहाँ पर आके निवास किया है, उनकी बैठक है यहाँ पर। और रघुनाथ दास गोस्वामी ने यहाँ पर इसके किनारे बैठकर चैतन्य महाप्रभु के जीवन का उत्तरार्ध जो है लेटर हाफ, उसका पूरा कथा यहाँ पर किया हुआ है, और उनसे नोट्स उन्होंने लिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने, और मुरारी गुप्ता के कर्चा थे लिखे हुए, वो बाल लीला के वर्णन थे उसके अंदर फर्स्ट हाफ पूर्वार्ध। तो मुरारी गुप्ता के कर्चा से पूर्वार्ध और दास गोस्वामी के प्रवचन से उत्तरार्ध, ऐसे इकट्ठा करके राधा कुंड के किनारे ही कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत का लेखन किया है। सर्वश्रेष्ठ शास्त्र है वो। जो लोग भगवान से प्रेम में रत हैं, पूर्णता शरणागत है, वो क्या करते हैं, उनके लीलाओं का वर्णन चैतन्य चरितामृत है। भगवद गीता जो है ना, वो कन्फ्यूजन की स्थिति में स्थित शुरू होती है, अर्जुन कन्फ्यूज्ड है, और अंत कहाँ होता है कि अर्जुन भगवान को शरण जाते हैं, ये गीता का अंत है। फिर ऐसे शरणागत भक्त लोग क्या करते हैं, उनका वर्णन भागवत में है, और भागवत का अंत कहाँ होता है, प्रेम में होता है, शरणागति से प्रेम, भागवत वहां समाप्त होता है। और ऐसे प्रेम प्राप्त किए हुए लोग क्या करते हैं, उनका वर्णन चैतन्य चरितामृत में है, और उसका अंतिम स्थिति क्या है, राधा रानी का परमोच्च प्रेम जो है, उसकी समझदारी जानकारी और प्राप्ति, वो उसका अंत है। तो वो शास्त्र जो परमोच्च शास्त्र है चैतन्य चरितामृत, उसको PhD कहते हैं, सुपर PhD, वो ग्रंथ का लेखन इसके किनारे किया गया है कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने। बहुत रोचक है, वो भी पढ़ने के लिए बहुत रोचक है, कि प्रेम प्रेम और प्रेम ही है। कभी कभी विश्वास नहीं लगता है इसमें कि इतना प्रेम कैसे हो सकता है, क्योंकि हम लोग तो मिक्सचर में है ना, हम लोग को थोड़ा थोड़ा प्रेम मिलता है, बहुत सारा दुख मिलता है रिश्तों में नातों में, बहुत सारा धक्का धुक्की होता है हमको, है ना। चाहते तो हम प्रेम हम, लेकिन अधिकतर दुख मिलता है रिश्तों नातों में, थोड़ा थोड़ा प्रेम मिलता है, कुछ कुछ लोगों से मिलता है, लेकिन ये सब लोगों से हर समय लगातार बेशुमार अनंत मात्रा में प्रेम ही मिलता रहेगा, तो आपको भी थोड़ा आश्चर्य होगा, ऐसे कैसे हो सकता है, कहीं हम सपने में तो नहीं है, ऐसा लगेगा। इतना सारा प्रेम का वर्णन दिया है, और वो पढ़ना क्यों चाहिए, क्योंकि गौलोक धाम में यही स्थिति है, वहाँ कोई द्वेष नहीं है, राग नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं है किसी के साथ में, केवल भगवान और भगवान के भक्तों का पारिवारिक जीवन प्रेम से भरा हुआ वहाँ पर है। तो वहाँ जाने के लिए आपको थोड़ा सा परिचय भी करना पड़ेगा ना, अगर मेरे घर में आ रहे हैं तो आप पूछेंगे ना कि घर में कौन कौन है, कितने बच्चे हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। उस तरह से आपको गौलोक धाम जाना है तो वहाँ की जानकारी आपको होनी चाहिए कि किस प्रकार के माहौल में आप प्रवेश करेंगे, व्हाट इज टू बी एक्सपेक्टेड, है ना। तो इंग्लैंड जाएंगे तो ठंड होगी तो आपको गर्म कपड़े लगेंगे, राजस्थान जाएंगे मई में तो बहुत गर्मी लगेगी, आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए ना। तो सब्जी नहीं मिलेगी, खाली कठोर मिलेगा, पंजाब में लस्सी मिलेगी, थोड़ा आइडिया लेते ना आप लोग कि वो कैसा है वहाँ पर। अभी आप कैंप में जा रहे हो तो कैसा वातावरण है, 22 डिग्री है, रात को 7-8 डिग्री है, आइडिया लेके जाते ना आप लोग। उसी तरह से गौ लोग जाना है तो वहाँ कर भी कौन रहते हैं, परिवार कौन सा है वहाँ पर, क्या होता है, क्या एक्टिविटी है, क्या करना होता है। कुछ लोग बोलते हैं वहाँ पर न्यूज़पेपर नहीं है क्या, तो वहाँ पर न्यूज़पेपर नहीं है वहाँ पर आनंद ही आनंद है। कोई खोलते ही आज 4 मरे गाड़ी और ट्रक के मुठभेड़ में, 5 मरे, 5 घायल, अस्पताल में अस्तव्यस्त हैं, ये सारे खबरें वहाँ पर नहीं होती। इंद्र को एक बार शाप मिला था कि वो सुअर बन जा, तो वो सुअर बन के पृथ्वी पर गटर में अपना पूरा परिवार बनाकर फ्रेश माल खाता था, शाप मिला था उसको, भूल भी गया कि मैं इंद्र हूँ। तो बहुत दिन वो इंद्र का जगह खाली था ना, भाई कौन काम करेगा, तो नारद मुनि को भेजा, भाई जाओ ले जाओ उसको, कितने दिन से पोस्ट खाली है इधर। तो वो आए गटर के पास, तो वो उसको समझा रहे हैं कि तुम इंद्र हो, तो बोलते ये मेरी सुंदर पत्नी देखो कितनी सुंदर है, कितने बच्चे सुंदर है, देखो यहाँ से फ्रेश माल आ रहा है, रोज हमारा आनंद होता है यहाँ पर। तो उसने बहुत सारा वर्णन किया। फिर वो सुवर ने एक प्रश्न पूछा कि स्वर्ग लोक में फ्रेश टूल है क्या, फ्रेश टूल, ताजी विष्ठा। बोलो वो नहीं है वहां पर, बोले हलवा है, पूड़ी है, खीर है, डिवाइन सब कुछ मिलेगा आपको। तो बोले अगर वहां पर फ्रेश टूल नहीं तो मैं आना नहीं चाहता वहां पर। तो फिर नारद मुनि ने उसको अपनी सिद्धि बल से वो सुवर के रूप में बैसे हुए इंद्र को इंद्र की चेतना दी, ही अवॉर्डेड हिम इंद्र कॉन्शियसनेस, रिमाइंडेड हिम विद कॉन्शियसनेस कि आप इंद्र हो। जैसे ही इंद्र की चेतना प्राप्त हुई तो ए किधर हूँ मैं यहाँ पर, क्या है सब, ये कौन है, ये कौन बच्चे यहाँ पर, क्या इतनी गंदगी में क्यों रखा है मुझे। बोले आपको शाप प्राप्त हुआ था, अभी निकलो यहाँ से आप। तो उसको वहाँ से मुक्त करके वापस स्वर्ग में बिठा दिया। तो संत लोग भी यही करते हैं। हम लोग सोचते हैं हम पुरुष है, स्त्री है, कोई बोलता है मैं हाथी हूँ, कोई बोलता है शेर है, कोई बोलता है मैं पेड़ हूँ, पंछी हूँ। लेकिन गुरुजी आपको आके बता रहे हैं कि आप आत्मा हो, भगवान के अंश हो, आप भूल चुके हो। अभी आपको लगता है यही मेरा परिवार है, यही मेरी पत्नी है, यही पति है, यही मेरा माहौल है, यही मेरा बिरादरी है, यही मेरा फ्रेश भोजन है, ऐसा आपको लगता है। लेकिन आप भगवान के अंश हो, भूल चुके हो। अभी जागरूक करो अपने आप को और लौट के चलो। बहुत हो गया यहाँ का खेल, यहाँ की माया में अंधकार में पड़ा हुआ खेल छोड़ दो अभी आप। तो ये सब जो बातें हैं ना, ये जगह में आपको कृपा मिलेगी उसकी, पहचानने में अपने आप को कि हम कौन हैं। अभी हम सोच रहे हैं, जब कर रहे हैं फिर सोच रहे हैं कि मैं आदमी हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं फलाना हूँ, ये मेरी ये उम्र है, मैं भारतीय हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं फलाना हूँ। ये सब है लेकिन वो झूठ है, एक्चुअली कुछ समय के लिए दिया हुआ सत्य है। लेकिन यहाँ पर आकर आप अपने आप को सही रूप में, आपको आईना दिख सकता है कि मैं ममय वांछो जीव लोके जीव भूत सनातन हूँ। फिर आगे जाकर चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर आए थे, रघुनाथ दास गोस्वामी के द्वारा जीर्णोद्धार करने की पहले की बात है, तब ये दो कुंड लुप्त हो गए थे। तो स्वयं कृष्ण ने आकर चैतन्य महाप्रभु के रूप में राधा कुंड श्याम कुंड को दोबारा प्रकट किया और हमारे लिए प्रस्तुत किया। फिर रघुनाथ दास गोस्वामी ने उसको रेनोवेट किया और बड़ा करके अच्छी तरह से आज जो दिख रहा है ना, वो रघुनाथ दास गोस्वामी की कृपा है, इसलिए हमको आज दिखाई पड़ रहा है। मूल जो राधा कुंड श्याम कुंड है वो उसके अंदर है, एक्चुअली वो इससे बहुत छोटा था। कंकण कुंड और श्याम कुंड के नाम से जानते हैं उसको, उसको एक्सपांड करके, बड़ा करके, फिर विस्तार करके रखा हुआ है। इसमें सारे तीर्थ विराजमान हैं, सारे सागर, जितने भी 7 प्रकार के सागर हैं, जितने भी पर्वत हैं, जितनी नदियाँ हैं, जितने तीर्थ स्थान हैं, जितने कुंड है, सरोवर, जितने भी विश्व में पवित्र हैं, वो सब इसमें आकर आश्रय लिए हुए हैं, राधा रानी के चरणों में आश्रय लिए हुए हैं। और राधा रानी का स्नान किया राधा रानी ने उसके अंदर, इसलिए राधा रानी का अंग स्पर्श भी उसके अंदर, वो सारी कृपा उसके अंदर है। इट इज राधा रानी चरणामृत, और बीच में दोनों मिले हुए हैं, वो कृष्ण का चरणामृत है, वहाँ कृष्ण ने स्नान किया था, ये राधा रानी ने स्नान किया है, तो दोनों का जल जो है मिक्स होके कृपा ही कृपा है यहाँ पर, अनंत कृपा। तो आप लोग उसमें आचमन कीजिए और हृदय से प्रार्थना कीजिए कि कि मुझे कुछ समझ में आया हो या ना आया हो, जितना समझ में आया हो कम हो शायद, जैसे भी हो मैं माया में हूँ, इच्छा मेरे मन में अनंत है नहीं है, जो भी कुछ है मेरी जो भी अवस्था है, मैं इसी पूरी अवस्था के साथ आपके चरणों में गिर रहा हूँ बस। आई एम अ सोल सरेंडर टर्न टू यू, जैसा भी हूँ जैसी भी हूँ, मुझे पता नहीं मैं कितनी गहराई में माया में हूँ, कितनी गहराई में कृष्ण में हूँ, आई डोंट नो एनीथिंग, मेरा डायग्नोसिस मेरे पास नहीं है, नो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, नो एनालिसिस, नो डायग्नोसिस, आई डोंट हैव एनीथिंग, बट जो भी हूँ मैं आपके सामने आई हूँ, आया हूँ, मुझे आप स्वीकार कर लो और जो भी करना है मेरे साथ वो करो, लेकिन आपके पास मुझे ले चलो, इतना तो बोल सकते हैं ना, ज़्यादा टेक्निकल बनने की जरूरत नहीं है, यू कैन जस्ट से आई एम अ फॉलन सोल, ये तो बात सही है। हाँ आप बोलेंगे प्रभु जी आप होंगे फॉलन, मुझे क्यों बोल रहे हैं आपको लगता हो तो आप बोलो ना मैं फॉलन हूँ, लेकिन मुझे लगता नहीं कि मैं फॉलन हूँ, ठीक है कोई बात नहीं, ये भी सत्य हो सकता है लेकिन इस शरीर में तो मैं हूँ ना, मरने वाले शरीर में, बुढ़े होने वाले शरीर में, बीमार पड़ने वाले शरीर में हूँ ना मैं, बदबू वाले शरीर में हूँ कि नहीं, हाँ सब जगह नौ छिद्र है, नौ छिद्र से बदबू ही आती रहती है, नौ छिद्र है ना शरीर के, नौ छिद्रों में से बदबू आने वाले शरीर में मैं हूँ, इतना तो प्रूफ है कि मैं गिरा हूँ भौतिक जगत में, भौतिक भगवान के धाम से वापस जाना है, इतना तो पता है ना सबको, तो जो भी हमारा अहम आपको मानने में मना कर देता है वो भी ठीक है, लेकिन इतना जरूर प्रार्थना करो कि जैसा भी हूँ आपके चरणों में आना चाहता हूँ, और भगवान बड़े दयालु हैं, अगर आप नम्रता से बोलेंगे ना तो आपको स्वीकार करेंगे और फिर आपके ऊपर ऑपरेशन करेंगे, कुछ वो एनेस्थेसिया देके करेंगे, कुछ बिना उसके करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर, वो आप रोएंगे लेकिन आपको पता है कि थोड़ा रोऊंगा लेकिन ऑपरेशन के बाद में ठीक हो जाऊंगा, है ना, डॉक्टर क्या बोलते हैं, थोड़ा कष्ट होगा, दवाई दूंगा आपको मैं, भूल भी दूंगा, बेहोश भी करूंगा, उसके बाद ये सब तकलीफ खत्म हो जाएगी, कुछ आठ दिन कष्ट होगा थोड़ा बहुत इधर उधर, हम सब थमा लेंगे आपको, चिंता मत करना, आपके हमारे कवर में रहेंगे आप, ऐसा ही होता है भगवान की तरफ से, श्रद्धा रखिए आप, जो भी होगा भगवान की इच्छा से आपने प्रार्थना की है, जो भी कि भगवान करेंगे अच्छा करेंगे, और एक दिन आप भगवान के धाम में अपने आप को पाएंगे, ये शुभकामना के साथ मैं मेरा कथा को यहाँ विराम देता हूँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।